हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सबको पावन नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ होगा अच्छी तरह से, और आपने अहोबिल नरसिंह स्वामी अर्थात उग्र नरसिंह स्वामी और कारणज नरसिंह स्वामी इनका भी दर्शन किया होगा। आप में से कितने भक्तों ने कारणज नरसिंह स्वामी और अहोबल नरसिंह स्वामी का दर्शन नहीं किया है, हाथ ऊपर कीजिए। बस बाकी सब ने कर लिया है, अच्छी बात है। तो कल छत्रवट नरसिंह स्वामी और योगानंद स्वामी का दर्शन तो कर ही लिया था आप सबने। तो छत्रवट नरसिंह स्वामी के बारे में संक्षेप में कुछ हम और कहना चाहेंगे जो कल नहीं बता पाए। पीपल या वट वृक्ष के नीचे ये मूर्ति की स्थापना हुई, स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि स्वयंभू स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो अलग से प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के या भगवान का आह्वान वहाँ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एको हो रहा है, जिस कॉल हिम एंड सी। तो ये छत्रवट नरसिंह स्वामी ये स्वयंभू मूर्ति है, वो पीपल का वृक्ष तो अभी नहीं रहा, और केवल एक छोटा सा भाग उस वृक्ष का मंदिर के विमान के पीछे भाग में दिखाई पड़ता है। हरे कृष्ण। बाहर सबको सुनाई दे रहा है? अब इस कुछ तो ठीक नहीं है साउंड में, कहीं कुछ बैलेंस कुछ नहीं है। देखो जरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब सुन पा रहे हैं, पीछे जो बैठे हैं सब, सामने भी। तो छत्रवट नरसिंह स्वामी के वहाँ प्रकट होने की एक सुंदर छोटी सी लीला भी है। आप तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर कई लोक हैं, गंधर्व लोक, किन्नर लोक इत्यादि ऊपरी लोकों में। गंधर्व लोक के निवासी जन्म से ही संगीत में सिद्ध होते हैं, संगीत और नृत्य में। इसलिए आजकल भी यदि कोई बहुत मधुर रूप से गाता है तो ऐसे कहा जाता है कि ये गंधर्व की तरह गाता है ना। बल्कि कई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों का नाम भी ऐसे ही है, गंधर्व के पीछे रखा गया है। तो ये दो गंधर्व थे जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, और भक्ति काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने किया था, पर उनको ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उनको भगवान की कृपा नहीं मिली है, अभी तक वो भक्ति में परिपूर्ण नहीं हुए हैं, तो थोड़े बहुत निराश थे। तो यहाँ इस स्थान में आए जहाँ पर आज छत्रवट नरसिंह स्वामी मंदिर है, और वहाँ पर वो गीत गाने लगे और नृत्य भी करने लगे। तो भगवान नरसिंह देव वहाँ पर प्रकट हुए चुपके से, और पीछे से उनको देख रहे थे। बड़ा आनंद उनको आ रहा था। और वहाँ उनकी मुद्रा ऐसी है विग्रह की, बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत बड़ी है और सुंदर मूर्ति है, हल्की मुस्कान है भगवान के मुखारविंद पर, क्योंकि वो संगीत का आनंद ले रहे थे। और वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी का चिन्ह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। भगवान पद्मासन में बैठे हुए हैं, दाहिना हाथ उनका अभय मुद्रा में है, अर्थात अभय प्रदान करना। और जो दूसरा करकमल है उनका, वो इस तरह से उनकी जंघाओं में है क्योंकि वो संगीत का ताल रख रहे थे। आप जानते हैं कि संगीत में जब ताल रखना होता है तो ऐसे जंघाओं पे हाथ करते हैं, तो भगवान नरसिंह देव अपने बाएं हाथ से अपने जंघाओं पे ताल रख रहे थे, क्योंकि वो गंधर्व लोग गीत तो गा रहे थे तो उनके साथ ताल रखने के लिए भगवान नरसिंह देव भी ऐसे कर रहे थे, बहुत खुश थे। तो उनके हाथ ताल रखने की आवाज़ जो है वो गंधर्वों ने सुन ली और पीछे मुड़ के देखा कि अरे स्वयं भगवान यहाँ पर हमारे नृत्य और गीत को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो भाव विभोर हो गए, तो भगवान ने उनको उनके ऊपर कृपा बरसाई, प्रेम प्रदान किया। और भगवान श्री नरसिंह देव जब उनका गीत सुन रहे थे और नृत्य देख रहे थे तो स्वाभाविक रूप से प्रशंसा कर रहे थे, आ हा हा ऐसे करके, हाँ ओहो ऐसे करते हैं ना कभी कभी, तो इसलिए इन दोनों का नाम पड़ गया आहा और ओहो। तो ये दो गंधर्व हैं, उनका नाम ऐसे है आहा और ओहो। और ऐसे कहा जाता है कि जो संगीत विद्या सीखना चाहते हैं वहाँ जाके सीखें तो जल्दी सीख जाएंगे और बड़े प्रवीण बन जाएंगे संगीत विद्या में। और वहाँ जो पुजारी थे फिर उन्होंने ये बताया कि इस मंदिर के अंदर खड़े होकर यदि हम ताली बजाते हैं और एक क्षण के लिए रुकते हैं तो सा सप्त स्वर में सारे गम पधनी जो है वो सा सुनाई पड़ेगा, और वाकई ऐसे वो प्रतिध्वनि होती है एक प्रकार की, और फिर रे ग म प ऐसे। तो हमने करके देखा कि हाँ वो एक प्रकार की ध्वनि आ रही है। तो खैर ऐसे किसी दूसरे मंदिर में तो हमने नहीं देखा था। ऐसे तो कई मंदिर हैं, जैसे हॉस्पेक्ट वगैरह एक मंदिर है जहाँ खंबे हजार खंबे हैं और हर एक खंबे को आप स्पर्श करेंगे, उसको खटखटाएंगे तो एक तरह की आवाज़ आती है, एक राग या एक तरह के संगीत के वाद्य की ध्वनि आती है। तो कैसे उस समय में उन्होंने ये सब जानकर किया होगा, इससे तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो खैर यहाँ भी छत्रवट नरसिंह में ऐसे लीला भगवान की हुई। तो ये भगवान नरसिंह देव जो हैं ये बहुत संगीत के प्रिय भी हैं, ये बात हम नहीं जानते हैं नरसिंह देव भगवान के बारे में। अधिकतर यही लोग जानते हैं कि भगवान बड़े उग्र रूप में आए, वो क्रोध के प्रतीक हैं और साथ साथ में उन्होंने प्रहलाद के ऊपर कृपा की। परंतु नरसिंह देव भगवान संगीत को बहुत पसंद करते हैं, नृत्य को भी बहुत पसंद करते हैं, ये इस लीला से साबित होता है। तो वैसे हमने उनसे कहा कि आप यहाँ कुछ किताब लिख लीजिए, इतने विस्तार में यहाँ की लीलाओं का वर्णन कीजिए और हर भाषा में इसको आप छापिए। यहाँ के भाषा में तेलुगु भाषा में तो कुछ है परंतु इतने विस्तार में नहीं है, अंग्रेजी में भी कुछ है परंतु विस्तार में नहीं है। अभी आजकल के लोग इसको लिख के नहीं रखेंगे तो आगे चल के तो ये सारी लीलाएं कोई सब लोग भूल जाएंगे, कोई जानेंगे नहीं। तो देखिए भगवान की कितने सुंदर सुंदर लीलाएं होते हैं और ये सब लीलाएं उनके भक्तों के साथ में ही वो करते हैं ना, भगवान अकेले कभी नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए तो भगवान अनेक बने, एको बहु श्याम, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होकर सारे जीव बने हैं, और फिर भगवान इन जीवों के साथ प्रेम के संबंधों का आनंद आदान प्रदान करते हैं। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ उनके भक्त होते हैं, जहाँ उनके भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं, दोनों का संबंध टूटता नहीं है कभी। आपको याद होगा कि हम बता रहे थे कि तिरुपति तिरुमला के थोड़े लीलाएं बच गई थी। वैसे तो कितने लीलाएं हैं, परंतु खास करके वहाँ हमें समय कम मिला, इसलिए हमने सोचा कि आज और हो सके तो कल सुबह हम बालाजी भगवान के कई भक्तों की कोई कथाएं आपको सुनाएं, और खास करके एक भक्त का जिनका नाम था आचार्य, जो श्रील रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। वो वहाँ पर तिरुमला पे आए और उन्होंने अपना जीवन बालाजी की सेवा के लिए समर्पित किया। तो अनंताचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, और जो बालाजी या वेंकटेश्वर भगवान की लीला को पढ़ते हैं और तिरुमला के इतिहास को जानते हैं, अवश्य उन्होंने अनंताचार्य का नाम सुना होगा। आप में से कितने भक्तों ने अनंताचार्य का नाम सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। यह अन्नमाचार्य से अलग है, याद रखिए। अन्नमाचार्य की चर्चा तो हम उस दिन कर चुके हैं, ये अनंताचार्य है। तो हुआ ये कि एक बार श्रील रामानुजाचार्य आलवरों के ग्रंथों से कुछ पढ़ के अपने शिष्यों को सुना रहे थे। आलवरों ने, जो कि श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनके जो गीत हैं भक्ति गीत, उनको मिलाकर दिव्य प्रबंधम कहते हैं। जितने भी बारह आलवार हैं, और उनके अलग अलग नाम भी हैं, नम आलवार नाम के एक आलवार थे, तो उनकी जो पंक्तियां हैं, स्तोत्र है, गीत हैं, उनको तिरुवेमोड़ी कहते हैं। आप में से जो तमिल भाषा बोलते हैं, आपने अवश्य इन सब चीज़ों को सुना होगा। आशा करते हैं कि बचपन से आपने कुछ पढ़ा भी होगा, या ऐसे कोई नम्मालवार के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। नम्मालवार का संबंध बालाजी से और तिरुमला से भी बहुत है, वो भी वहाँ आया करते थे। तो आपको याद होगा, वहाँ जब हम अलग अलग स्थानों में गए थे तो नम्मालवार की सन्निधि वहाँ पर थी। तो खैर, दिव्य प्रबंध के तिरुवेमोड़ी से रामानुजाचार्य पढ़ रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और इसमें नम्मालवार जो है एक पंक्ति में वर्णन करते हैं कि तिरुमला में बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं, और इसलिए तिरुमला फूलों से बहुत सुंदर बन चुका है। और ये सही है, ऐसे बताया जाता है कि भगवान श्री विष्णु के दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण धाम हैं, खास करके बालाजी के या महाविष्णु के, उनमें से श्री रंगम जो है, जहाँ पे रंगनाथ भगवान विराजमान रहते हैं, वो शयन कर रहे होते हैं और इस तरह से लेटे हुए रहते हैं और दर्शन ले रहे होते हैं। तो श्री रंगम भोग मंडप कहलाता है, क्योंकि वहाँ भगवान श्री रंगनाथ देव विलास करते हैं, लीला विलास करते हैं, विहार करते हैं, भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो भोग मंडप है। फिर कांचीपुरम में भगवान वरदराज के रूप में विराजमान हैं, वरदान देने वालों में से राजा, सबसे बड़े वरदान प्रदान करने वाले। तो क्योंकि वो यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए थे, यज्ञ स्थल से उत्पन्न हुए थे, वो त्याग मंडप कहलाता है। और तिरुमला जो है, क्योंकि वो पुष्पों से सुमंडित पहले से हुआ करता था, इसलिए उसे पुष्प मंडपम कहते हैं। तो तो ऐसे नम्मालवार ने तिरुवनमोड़ी में एक जगह है वर्णन किया है तिरुमला के सुंदर पुष्पों का। रामानुजाचार्य इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे उनका प्रवचन सुन रहे थे श्रीरंगम में, देखो कितना सुंदर वर्णन है तिरुमला का जहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान विराजमान है, वहाँ बहुत सारे फूल हैं ऐसे वर्णन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई वहाँ जाएं, वहाँ जाकर बसें तिरुमला के ऊपर, फूल का बगीचा बनाएं या बगीचे बनाएं और वहाँ पे फूलों से बड़े सुचारू रूप से बालाजी भगवान की सेवा करते रहें। अब आप सब तो जानते ही हैं कि भक्ति के पथ में अर्चा विग्रह की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, और अर्चा विग्रह की सेवा में ये भी आप जानते हैं कि फूलों का कितना महत्व है। कल्पना कीजिए यदि हमारे पास कोई फूल नहीं होते तो अर्चा विग्रह की सेवा हम कैसे कर सकते थे। फूलों की माला, तुलसी की माला आदि भगवान को भगवान के लिए बनाना, उनको सजाना और फिर तरह तरह से उनके आभूषण भी फूलों से तैयार होते हैं, उनका सिंहासन भी फूलों से सजाया जाता है, मंदिर भी फूलों से सजाया जाता है। जब षोडश उपचार होता है, 16 पदार्थों से उपचार भगवान का होता है, उसमें भी फूल आरती के समय पूजा के समय अर्पण किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में फूलों के बिना भक्ति करना थोड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से यदि करना हो तो रामानुजाचार्य जानते थे कि फूलों का महत्व कितना है भगवान की सेवा में। वैसे एक बार बेलगाम में हम केवल फूलों के ऊपर कोई प्रवचन दिए थे एक या दो रविवार के दिन, और हम ये बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है कि भक्तों को भी फूल उगाने चाहिए अपने अपने घरों में और मंदिरों में भी, हाँ, और रासायनिक खाद नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और फूलों को उगा के फिर अपने घर में जो मंदिर हैं वहाँ भगवान को अर्पण करने चाहिए, और फिर जहाँ आप मंदिर में आओगे तो मंदिर में भी भगवान की सेवा के लिए फूल लाने चाहिए। तो कई भक्त हैं जो अपने घर में फूल उगा के भगवान के लिए ले आते हैं, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का सिद्धांत है, एक पुष्प भी क्यों न लेकर आए, तुलसी दल क्यों न लेकर आए, कुछ तो लेकर भगवान के लिए भेंट लेकर आना चाहिए। इसलिए तो सुदामा जी लेकर गए थे, कोई पोहे गरीब आदमी का भोजन है, द्वारकाधीश भगवान जो षडैश्वर्यों से संपन्न हैं, ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान को इस तरह का भोजन अर्पण किया जा सकता है? साधारण व्यक्ति ने सोचा होगा नहीं किया जा सकता है, परंतु सुदामा तो बड़े गरीब थे, उनके पास तो धन नहीं था, उनके पत्नी ने बड़े मुश्किल से किसी पड़ोसी से थोड़ा कुछ ऐसे ले लिया पोहा, और जब तक वो पहुंचे द्वारका में वो तो खराब हो चुका था। फिर भी भगवान ने इतने आनंद से सुदामा के पोहे स्वीकार कर लिए और चख के इतना स्वाद उनको लगा कि इसकी कोई तुलना नहीं है। तो भगवान हमारे छोटे से भी भेंट से प्रसन्न होते हैं यदि वो भक्ति भाव से अर्पण किया जाता है। तो जब रामानुजाचार्य ने ऐसे कहा तो सारे शिष्यों में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया, किसी ने हाँ नहीं कहा। क्यों ऐसे? पहली बात तो ये है कि वो श्रील रामानुजाचार्य का संग नहीं खोना चाहते थे, सब बड़े आनंद से अपने गुरु का संग श्रीरंगम में ले रहे थे, प्रतिदिन वहाँ रामानुजाचार्य कथा करते, प्रवचन करते, भक्तों से मिलते, स्वयं रंगनाथ जी की सेवा भी करते, कभी कभी यहाँ वहाँ प्रचार के लिए जाते, भक्त लोग उनके साथ में जाते, और जल्दी से फिर रामानुजाचार्य वापस श्रीरंगम में लौट के आते। तो सारे भक्त श्रील रामानुजाचार्य से इतने आसक्त थे कि कोई उनसे दूर नहीं रहना चाहता था। तो यह भी स्वाभाविक है गुरु का संग जो है वो दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो है वपु और दूसरी है वाणी। वपु का मतलब है कि गुरु या किसी भी वैष्णव का या भगवान का प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक सानिध्य प्राप्त करना, उनके निकट रहना शारीरिक रूप से, या उनके संपर्क में बहुत गौर से काफ़ी गंभीरता से रहना, बार बार गुरु या भगवान का संग करना, तो इसको वपु कहते हैं। परंतु ये तो सब जगह या सब समय संभव नहीं होता। तो दूसरी बात है वाणी, जो भगवान के या गुरु के या वैष्णवों के वाणी होती है, उनके उपदेश होते हैं, उनको सुनने से गुरु या भगवान का संग प्राप्त होता है। और ये वाणी केवल कथा हो सकती है, कोई व्यक्तिगत दिया हुआ किसी को आदेश हो सकता है, आदेश हो, उपदेश हो, जो भी हो, तो ऐसे वाणी रूप से भी भगवान का या उनके भक्तों का संग प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जिसको वपु मिला हुआ है वो वपु खोना नहीं चाहता, ये भी स्वाभाविक है। परंतु वपु सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है वाणी सेवा, क्योंकि वपु सेवा हो और वाणी सेवा न हो तो फिर ये अच्छा नहीं है। गुरु का आदेश, भगवान का आदेश, वैष्णव का आदेश कभी कभी ऐसे रहता है कि दुनिया भर में फैल जाओ और भगवान के भक्ति के रास्ते का प्रचार करो। तो जब दूर दूर जाना पड़ता है तो फिर संग नहीं मिलता है। तो वाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो खैर, अब किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो रामानुजाचार्य का संग खोना नहीं चाहते थे। और दूसरा कारण ये भी था कि उन दिनों में, जैसे हम पहले भी तिरुमला में चर्चा कर चुके हैं, ऊपर तिरुमला जी के लिए जाने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल का था, कठिन था, घने जंगल थे, जंगली जानवर थे, खतरे बहुत थे, कोई रास्ता भी ठीक से नहीं था। और इसके बजाय इसके अलावा ऊपर जाकर बहुत ठंडी थी, और ये सब तमिलनाडु में रहने वाले भक्त थे, गर्मी के वातावरण में बड़े हुए थे, अब यहाँ तिरुमला की ठंडी सहन नहीं हो रही थी, नहीं होनी थी, तो उन्हें सोचा कि वहाँ क्या जाना, हम यही रहेंगे। तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। थोड़े क्षणों के बाद फिर एक भक्त ने हाथ ऊपर किया, अकेले थे, और उनका नाम था अनंताचार्य। तो अनंताचार्य ने कहा कि गुरुदेव, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, मैं जाके वहाँ तिरुमला में रहूँगा और वहाँ बगीचे बनाऊँगा, फूल उगाऊँगा भगवान के लिए, और उनको अर्पण करके मैं इस तरह आपको प्रसन्न करूँगा। तो रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आलिंगन कर लिया अनंताचार्य को और कहा कि आज से तुम्हारा नाम अनपिल्लई, अनपिल्लई मतलब तमिल भाषा में पुरुष को कहते हैं, सही है ना? अनपिल्लई, सॉरी, हमारी हम तमिल नहीं जानते हैं तो उच्चारण में ठीक नहीं, अनपिल्लई, अनपिल्लई का मतलब है पुरुष, सही है ना, पुरुष। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि तुम सही पुरुष हो, कि तुम तैयार हो गए, इस तरह से आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए बाद में चल के उनका नाम हुआ अनंतान पिल्लई, अनंताचार्य, अनंतान पिल्लई या अनंतालवान भी, ऐसे भी नाम रखा गया उनका। तो इस तरह से देखिए, मुश्किल की सेवा स्वीकार करके वो अपने गुरु को इतना प्रसन्न कर पाए। तो गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का जो आनंद है उसको भी त्यागने के लिए तैयार हो गए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि सही सेवा कैसे की जाती है, सेवा की भावना कैसी होती है। केवल हम अपने आनंद के लिए सेवा नहीं करते हैं, परंतु हमारे गुरुजनों के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, केवल अपने आनंद के लिए नहीं। तो फिर अनंताचार्य चल पड़े, वो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, बस उठे, अपने थोड़े बहुत सामान था, उनका ब्राह्मण थे, उनका धन था, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, थोड़ा कुछ जो था उठा के ले गए। उनके पास ना कोई वॉशिंग मशीन था, ना कोई टीवी था, ना कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर था, ना कोई ऐसे मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। बोरी बिस्तर, थोड़े कपड़े बांध लिए, चल पड़े, और क्या था लेने के लिए। तो निकले, वहाँ पे गए बड़े मुश्किल से, श्रीरंगम से चलते चलते आए तिरुमला, ऊपर चढ़े, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उनकी सेवा शुरू हो गई। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि अभी बगीचा मुझे बनाना चाहिए, तो बगीचा बनाना शुरू कर दिया। अब बगीचे में फूलों के लिए, फलों के लिए जल चाहिए, तो इसके लिए मुझे कुंड का निर्माण करना होगा, ऐसे सोचा उन्होंने। तो कुंड भी बनवाया, बगीचा भी तैयार हो गया, और इस तरह से उन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी। उस समय उनके पास सहायता करने के लिए कोई नहीं था, केवल वो और उनकी पत्नी, और एक आध बार कभी कोई भक्त आते जाते होंगे, अधिक संख्या में कोई थे नहीं उस समय लोग वहाँ पर। तो ऐसे सेवा करते करते सुबह शाम भगवान की सेवा करते, अर्चा विग्रह की, श्रीनिवास भगवान की, और फिर बाकी दिन में जो है अपने बगीचे में सेवा कर लेता। तो एक बार उन्होंने सोचा कि अभी ये जो कुंड है इसको और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जल कहीं कम न पड़ जाए। तो अभी और खुदाई करनी है, तो फिर खुदाई करने लगे, खुद उपकरण लेके बैठ गए खुदाई करने के लिए। मिट्टी निकालते थे, फिर एक टोकरी में मिट्टी भर देते थे, उनकी पत्नी को टोकरी दे देते थे, पत्नी अपने सर पे टोकरी रख के कहीं थोड़ी दूर जाती थी, वहाँ मिट्टी फेंक के खाली टोकरी को ले आती थी। तब तक और भी मिट्टी की खुदाई करते करते मिट्टी रखा हुआ होता था, वो उससे टोकरी में भर देते थे, फिर से पत्नी दूर ले जाती थी, वहाँ फेंक के मिट्टी फिर से आ जाती थी। ऐसे दिन भर इनका परिश्रम चलता रहा, पति पत्नी दोनों ऐसे दिन भर सेवा करते रहे, उस कुंड को बड़ा बनाते गए। अब भगवान श्रीनिवास या वेंकटेश्वर इतने प्रसन्न हुए इस सेवा से कि उनका दिल रहा नहीं गया, अरे ये मेरे भक्त इतना श्रम कर रहे हैं मेरे लिए, और मैं भी जाके इनकी मदद करूँगा। तो हुआ ये कि एक बार वो आए वहाँ पर, एक ब्राह्मण युवक या एक लड़के के, छोटे से ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी के रूप में आए, पीले रंग की धोती पहन रहे थे, कानों में कुंडल था, दिखने में बहुत सुंदर था ये बच्चा, छोटा सा लड़का था, ब्राह्मण लड़का था। तो वो आया वहाँ उनके पास में, दिखने में बड़ा मासूम भी था, और वहाँ अनंताचार्य के पास आके कहने लगा कि हे अनंताचार्य, आप इतनी सेवा कर रहे हो तो मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, बालाजी की सेवा मैं भी करना चाहता हूँ। तो अनंताचार्य ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है और तुम इतने छोटे हो, अब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाके खेलो कूदो, कुछ आनंद ले लो, जाओ मजा करो, तुम जाके यहाँ नहीं रहना, इस तरह की सेवा हम लोगों के लिए है, ऐसे परिश्रम हमारे लिए है तो हम करेंगे। तो फिर भी वो लड़का कहने लगा, कृपया मुझे करने दीजिए, करने दीजिए। बार बार आग्रह करने के बाद भी जब अनंताचार्य ने मना किया तो ये बच्चा गया ही नहीं वहाँ से। अब अनंताचार्य को थोड़ा गुस्सा आया, तो अनंताचार्य ने कहा, देखो तुम्हें वेंकटेश्वर भगवान की सेवा करनी है तो और बहुत सी सेवाएं हैं, तुम कुछ भी करो, जाओ दूसरी जगह जाके दूसरी सेवा करो, परंतु ये एकमात्र मेरी सेवा है, मेरे गुरु के आदेश के अनुसार ये मैं कर रहा हूँ, तो ये सेवा मुझसे मत छीनो, तो तुम जल्दी से चले जाओ यहाँ से। तो वो चला गया बच्चा। फिर जब अनंताचार्य की पत्नी मिट्टी की टोकरी लेकर कहीं दूर चली गई थी मिट्टी को फेंकने के लिए, तो वो बच्चा उनके पास गया, जबकि अनंताचार्य इसको नहीं देख पा रहे थे इस दृश्य को, क्योंकि वो तो खुदाई कर रहे थे कुंड के भीतर। तो जाके उनसे कहे कि हे माते, आपके गर्भ में एक बच्चा है और वैसे भी इस समय आपको आराम करना चाहिए और आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपको ऐसे देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कृपया मुझे ये सेवा करने दीजिए। तो अनंताचार्य की पत्नी ने कहा, तुम तो मेरे पति के पास जाके बात कर ही चुके हो, उन्होंने तो मना कर ही दिया है, फिर मेरे पास क्यों आए तुम, अब ये ठीक नहीं है। फिर भी वो बार बार आग्रह करता रहा बच्चा, नहीं नहीं देखो, ऐसे अवस्था में जब आप गर्भवती हैं, अभी आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, आप इतना परिश्रम नहीं करना, बस थोड़ी सी सेवा मुझे करने दो, नहीं नहीं मेरे पति को पता चलेगा तो गुस्से हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, आप जाओ उनके पास टोकरी लेकर, मिट्टी लेकर आओ, और बीच रास्ते में मैं आपको मिलूँगा, आपसे टोकरी ले लूँगा और मैं जाके दूर मिट्टी को फेंक के चले आऊँगा और आपको खाली टोकरी दे दूँगा, फिर आपको खाली टोकरी ले जाके उनको देना, मिट्टी भर के फिर से आ जाना, ऐसे हम सेवा करेंगे। तो फिर अनंताचार्य की पत्नी भी सोच रही थी, बेचारा बच्चा कितना अच्छा है, और चलो ठीक है मान लेते हैं कि इतना आतुर है सेवा करने के लिए, पर ठीक है। अब उधर सेवा जो है बहुत जल्दी हो जाने लगी आधे समय में, तो करते करते अनंताचार्य को थोड़ा संशय आया कि ये क्या हो गया, इतने जल्दी सेवा हो गई। तो पत्नी से पूछा कि क्या बात है, पहले जब टोकरी ले जाते थे तो इतना समय लगता था, अब आधे समय में वापस आ रही हो इतनी जल्दी, कैसे संभव है। तो फिर अपने पति से झूठ तो नहीं बोल सकती थी, तो बताया कि ऐसे ऐसे है, देखो वो बच्चा आया था मेरे पास तो मैंने उसकी सेवा भी स्वीकार कर ली। तो बड़ा गुस्सा आया अनंताचार्य को, तो बच्चे के पास चले गए और बच्चे का पीछा करने लगे, वो बच्चा भागने लगा और अनंताचार्य पीछे से बोल रहे थे, मैंने बोला था ना नहीं आना, फिर भी तुम आए, अब आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। तो बच्चा डर के मारे भाग रहा था, एक पेड़ के पास आया और देखा कि पीछे से जल्दी आ रहे हैं, तो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गया, और अनंताचार्य नीचे खड़े थे, नीचे आ जाओ तो मैं सबक सिखाता हूँ, क्यों मेरे आदेश का पालन नहीं किया, नहीं 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 तुम, मैं नीचे आऊँगा तो तुम मुझे दंड दोगे, देखो मैं तुम्हें ये मेरी पीली धोती दे दूँगा और ये भी मेरे कुंडल वगैरह जो है मैं भी वो आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे दंड नहीं देना। तो अनंताचार्य ने सोचा कि इसको ऐसे झूठ बोलकर नीचे बुलवाना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा आएगा नहीं नीचे और ऐसे मेरी सेवा में विघ्न डालता रहेगा। तो उन्होंने बच्चे से कहा, ठीक है मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जबकि उनका इरादा पूरा था दंड देने का, कि जैसे ही बच्चा नीचे आए तो उसको पकड़ूंगा दंड दूंगा। तो बच्चे ने बात मान ली, बच्चा उतर आया, जैसे ही उतरा अनंत तालवान उसकी ओर आगे बढ़े, तो बच्चे ने समझा कि हाँ ये अभी दंड देने वाले हैं, तो और भागे। तो अनंत आचार्य उनके पीछे भाग रहे हैं, खुदाई का जो यंत्र था वो हाथ में था फोड़ जो है, और बड़े गुस्से से फिर वो फेंक दिया बच्चे के ऊपर, गुस्से में आदमी कभी कभी ऐसे कर देता है ना, तो वो फेंक दिया ऐसे, और वो बच्चा भागे जा रहा था तो उसके मुख में यहाँ पर लग गया, हनु में लग गया, और थोड़ा खून निकले वहाँ से, थोड़ा कट गया। तो अनंताचार्य ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, फिर भी बच्चे के पीछे पीछे जाता गया कि कहीं इसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, और बच्चा भागता हुआ गया मंदिर में, और मंदिर में आके भगवान के गर्भगृह में सिंहासन पे आके प्रवेश करके अंदर से दरवाजे बंद कर दिए। अब बाहर अनंताचार्य राह देख रहे हैं कि बच्चा बाहर आएगा, लेकिन आया ही नहीं। फिर पुजारियों को बुलाया कि देखो ऐसे ऐसे है, ये बच्चा था वो ऐसे कर रहा था, हमने मना किया तो इसने ऐसे ऐसे किया और भागते हुए अंदर चला गया। तो पुजारियों ने भी देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया, कैसे उसने बंद किया है। हरे कृष्णा, तो कोई बात नहीं, कथा जारी रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन सोइए मत बस। अब कोई देखने वाला नहीं है आपको, सो रहे हैं कि नहीं है, इसलिए तो खैर। तो पुजारी लोग भी आए, बड़े मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां पर केवल बालाजी भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो फिर उस समय वो जान गए कि वो बच्चा जो है वो स्वयं वेंकटेश्वर भगवान या श्रीनिवास भगवान थे। तो उन्होंने जल्दी से जाकर, पुजारियों ने कर्पूर वगैरह लगाया उनके हनु पर, क्योंकि खून बह रहा था, चोट लगी हुई थी, तो ठंडक पहुंचाने के लिए वहां कर्पूर लगा दिया। और अनंतालवान को बड़ा पछतावा हुआ कि अरे रे, मैंने क्या कर दिया, भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध मैंने कर दिया। उन्होंने दंडवत प्रणाम आदि किया, परंतु भगवान ने तो उनके भक्तों के भाव को स्वीकार करना था। तो आज भी वो जो कर्पूर उनको लगाया जाता है उनके हनु पर बालाजी भगवान के, और वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, आज भी ऐसी ये प्रथा चल रही है। और वहाँ मंदिर में जिस उपकरण के साथ वो अनंताचार्य खुदाई कर रहे थे, वो भी मंदिर के प्रांगण में टंगा हुआ है अनंताचार्य के समय से। तो ऐसे भगवान और भक्तों की लीला होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसे भक्तों की नकल नहीं कर सकते, ये याद रखना है। इनका स्थान कुछ अलग ही होता है, भगवान इनके साथ लीला करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम भी ऐसे करें। हमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए, सेवा के समय सारे नियमों का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, खास करके अच्छा विग्रह के साथ संबंध में। और कभी ऐसे हम जब सेवा कर रहे होते हैं, कोई भक्त आके कहे कि हमें भी थोड़ी सेवा में लगाइए, हम भी करना चाहते, मदद करना चाहते हैं, तो अनंताचार्य की नकल नहीं कर सकते, पीछा करेंगे उनको पिटाई करने के लिए। ये सब सुंदर लीलाएं हैं जो हम जिनसे हम जान सकते हैं कि भगवान और उनके भक्तों का प्रेम कितना तीव्र होता है, कितना मधुर होता है। तो खैर, ऐसे दिन बीत गए, अनंताचार्य वहां पर सेवा करते रहे, सुंदर सुंदर फूल उग रहे थे, तरह तरह के फूल, सुगंधित फूल, रंग बिरंगे फूल, अच्छे अच्छे से फूल जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। कई ऐसे फूल होते हैं जो भगवान को अर्पण नहीं किए जाते, ऐसे हर संप्रदाय में नियम होते हैं। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में भी सनातन गोस्वामी ने बहुत विस्तार में अलग अलग पुराणों और अन्य शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं किस तरह के फूल अर्पण किए जाने चाहिए, उनका लाभ कितना होता है, किस तरह के फूल अर्पण नहीं किए जाने चाहिए। खैर, आजकल के ज़माने में लोगों को ज़्यादा ज्ञान इसके बारे में नहीं है। तो ऐसी सेवा तो अनंताचार्य की चलती रही, और खबर रामानुजाचार्य के कानों तक पहुंची श्रीरंगम में। वैसे भी रामानुजाचार्य अनंताचार्य के ऊपर बहुत प्रसन्न थे, अब जैसे जैसे वो खबरें सुनते गए कि कितनी अच्छे ढंग से अनंताचार्य वहां पर वेंकटेश्वर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनका हृदय पिघल गया, अपने शिष्य के प्रति प्रेम हृदय में भर आया कि मेरा शिष्य कितने अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, कितना कष्ट हो रहा होगा उसे वहाँ उस ठंडी में रहना, अकेले सेवा करना, इतना परिश्रम वो खुद कर रहा है केवल मेरे आदेश का पालन करने के लिए, तो मुझे अवश्य जाकर अनंताचार्य को मेरा आशीर्वाद देना चाहिए, उसके साथ मुझे रहना चाहिए। तो फिर रामानुजाचार्य निकल पड़े श्रीरंगम से, श्रीरंगम से आए यहाँ तिरुपति में। तिरुपति में आके पहुंचे। पहुंचने के पहले जब तिरुपति से थोड़ी दूरी पर थे तो वो जानना चाहते थे कि तिरुपति का रास्ता कौन सा है। तो जैसे एक आदमी को देखा, वो शूद्र था, तो उससे पूछा कि तिरुपति का रास्ता कौन सा है। तो उसने अपने हाथ घुमाकर दिखाया कि ये रास्ता है, तो ऐसे चले जाना आप। तो रामानुजाचार्य ने तुरंत उस शूद्र को दंडवत प्रणाम किया। तो उनके साथ में जो शिष्य थे उन्होंने पूछा रामानुजाचार्य से कि अच्छा ठीक है, उन्होंने रामानुजाचार्य से पूछा कि आपने इस तरह से इस शूद्र को प्रणाम क्यों किया, पूरा साष्टांग दंडवत आपने किया, ऐसे क्यों? तो रामानुजाचार्य ने कहा, अरे तिरुपति नहीं जानते क्या? तिरुपति और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है। तिरुपति अर्थात साक्षात वैकुंठ धाम है, और इस व्यक्ति ने मुझे वैकुंठ धाम जाने के लिए रास्ता बताया। वो तो गुरु का काम होता है, ये तो मेरा गुरु है, मेरे गुरु है, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो सारे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य लगा रामानुजाचार्य के भाव को देखकर। तो खैर वो चले आए तिरुपति धाम में और वहाँ पे कई दिनों तक रहे। वो अपने प्रवचन आदि दिया करते थे, उनके शिष्य जो साथ में थे और वहाँ रहने वाले लोग भी आकर सुनते थे। अनंताचार्य भी ऊपर से आए उनके गुरु का संग करने के लिए, वो भी सुना करते थे। फिर अनंताचार्य ने एक बार जाके रामानुजाचार्य से निवेदन किया कि कृपया आप ऊपर तिरुमला में आइए और वहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन कीजिए। तो रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतना पतित जीव हूँ, मैं कैसे ऊपर जाऊँ? तो मैं यहीं से तिरुमला को प्रणाम करता हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ। और ये तिरुमला पर्वत जो है ये तो अनंत शेष है प्रत्साक्षात, तो मैं अनंत शेष के ऊपर पैर डाल के मेरे पैरों से कैसे मैं चले जाऊँ ऊपर? और नहीं हमारे जो पूर्वज हुए हैं भक्ति में, जैसे आलवार वगैरह हैं, वो भी कभी ऊपर चढ़े नहीं, तो मैं भी नहीं जाना चाहता ऊपर, मैं यहीं से बस प्रणाम करूंगा। तो ये भावना जो है ये हम महान भक्तों में देखते हैं। गोवर्धन के साथ भी ऐसे हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर कभी ऊपर नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि गोवर्धन न केवल कृष्ण के भक्त हैं, वो स्वयं कृष्ण के अवतार भी हैं। अन्नकूट उत्सव के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की परिक्रमा करवाई थी सारे ब्रजवासियों के द्वारा, तो अन्नकूट के समय गोवर्धन ने विशाल रूप धारण करके वो सारा अन्न जो है वो स्वीकार कर लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे ऊपर, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण और कृष्ण के भक्त का स्पर्श मेरे पैरों से कैसे करूँ। परंतु माधवेंद्रपुरी जाया करते, वो गए थे ऊपर। क्यों गए थे? क्योंकि भगवान का आदेश था उनको, स्वयं भगवान उनके सपने में आए थे कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, पुजारियों ने मुझे यहाँ छुपा कर रखा है, क्योंकि तुर्की या मुसलमान सैनिकों के आक्रमण से डर के मुझे यहाँ रखा, काफ़ी समय बीत गया, अब झाड़ियों में कांटे चुभ रहे हैं, काफ़ी धूल है यहाँ पर मेरे शरीर पर, ठंडी गर्मी बारिश में बहुत कष्ट होता है मुझे, तो यहाँ से मुझे निकालो, मैं इस फलाना इस स्थान में हूँ और मुझे गोवर्धन के ऊपर जाके स्थापना करो मेरी। इसलिए माधवेंद्रपुरी ऊपर गए, अन्यथा वो भी नहीं जाते थे। परंतु जब भगवान का आदेश प्रत्यक्ष मिल जाता है तो भक्त को करना पड़ता है। तो फिर भगवान की मूर्ति को उन्होंने ढूंढ निकाली गाँव वासियों के सहायता से, और भगवान गोपाल जी को ऊपर स्थापित कर दिया। आज गोपाल जी श्रीनाथ जी हैं, गोपनाथ द्वारा में हैं, विराजमान हैं वही गोपाल जी। तो महाप्रभु के संप्रदाय या उनके अनुयायी जो हैं, संप्रदाय में आने वाले भक्त, वो गोवर्धन को अपने पैर कभी छूते नहीं हैं, दूर से ही परिक्रमा होती है। यहाँ तक कि गोवर्धन से कोई पत्थर भी हमें उठाकर ले जाना नहीं चाहिए, शिला, जब तक कि कोई वहाँ स्थानिक ब्रजवासी हमें ऐसे कोई भेंट नहीं करे, हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरह से चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है, उसके ऊपर भी नहीं चढ़ते हैं। तो वैसे रामानुजाचार्य की भावना भी बड़ी सही थी, परंतु अब क्या किया जाए, भगवान तो ऊपर विराजमान है और यदि सेवा करनी है तो किसी को तो ऊपर रहना चाहिए। तो फिर अनंताचार्य कहने लगे अपने गुरु से, बड़े नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए, कि गुरुदेव यदि आप नहीं जाएंगे तो हम आपके शिष्य हैं, हम कैसे जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए तिरुमला में। आपकी यदि ये भावना है तो हम सब तो जाएंगे ही नहीं, और साथ साथ जितने आने वाली पीढ़ियां हैं हमारे बाद में वो भी नहीं जाएंगे, तो आपकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी। आप चाहते हो कि ऊपर वेंकटेश्वर भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे, परंतु ऊपर कोई भक्त जाएंगे नहीं तो सेवा नहीं होगी। तो रामानुजाचार्य हंसने लग गए, क्योंकि शिष्य कहने लगे तो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो खैर रामानुज फिर तैयार हो गए और फिर वो आगे चले। उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब ऊपर जाऊंगा। तो उनके मन में ये विचार था, ऐसे श्री वैष्णव में एक मान्यता है कि जब कोई शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है तो उस समय वहाँ भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर बैठकर राह देख रहे होते हैं, और जैसे ही वो भक्त पहुँचता है तो भगवान उसे अपने गोदी में ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ की मान्यता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसी भावना से मैं वहाँ पर जाऊँ ऊपर, कि अनंत शेष है वहाँ पर, उनकी गोदी में जाकर मैं विराजमान, क्योंकि ये भी वैकुंठ जगत है। तो इस भावना से फिर वो ऊपर जाने के लिए तैयार हुए, परंतु इतना सब मानने के बाद भी वो अपने पैरों से नहीं चले, वो अपने घुटनों से चले। ऐसे लोग कहते हैं अपने घुटनों पर तिरुपति से तिरुमला तक गए, ऊपर रहे वहां पर, उन्होंने दर्शन किया, बहुत प्रसन्न थे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा की, भगवान की स्तुति की। वहां जैसे ही वो तिरुमला पहुंचने वाले थे तो उनके मामा वहां पर आए। उनकी माता, रामानुजाचार्य की माता जो है वो भी एक बहुत अच्छे भक्त थी भगवान की, और उनके भाई थे जो सन्यासी थे, इनका नाम था श्री शैलपूर्ण। और जब रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था तो श्री शैलपूर्ण वहां पर आए थे और उन्हीं ने बच्चे का नाम रखा था रामानुज। इस शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, राम और अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। तो राम के छोटे भाई एक दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मण जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण। परंतु यदि हम राम को बलराम कह के जाने तो रामानुज का अर्थ होता है श्री कृष्ण, क्योंकि बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण हैं वृंदावन में। तो खैर श्री शैलपूर्ण ने ऐसे रामानुज का नाम रखा था। तो श्री शैलपूर्ण भी ऊपर तिरुमला में निवास करते थे। तो जैसे ही श्री रामानुजाचार्य ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वयं श्री शैलपूर्ण वहां उनका स्वागत करने के लिए आए हैं अनेक भक्तों के साथ में। तो रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लगा, श्री शैलपूर्ण उनके लिए गुरु के समान थे, बल्कि उनके एक गुरु थे ही वो। तो बड़ा संकोच हुआ, उन्होंने कहा कि आप क्यों आए स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर, किसी एक नए भक्त को भेजा होता एक दो भक्तों को, वो मेरे यहाँ स्वागत करके आपके पास ले आते मुझे। तो श्री शैलपूर्ण कहने लगे कि अरे, मैंने सारे तिरुमला में यहाँ भक्त समाज बढ़ रहा है, कितने लोग आते जाते हैं, सब जगह ढूंढा कि कोई नया भक्त नौसुखिया कोई भक्त मिले, कोई नहीं मिला सिवाय मेरे। तो इसलिए मैं ही व्यक्ति हूँ सबसे नौसुखिया, इसलिए मैं तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इससे श्री शैलपूर्ण की नम्रता को हम जान सकते हैं, वैष्णव के गुण कैसे होते हैं वो जान सकते हैं। तो रामानुजाचार्य उनके शिष्य तो हैं, बहुत प्रभावित हुए। फिर रामानुजाचार्य वहाँ रहने लगे और उन्होंने सोचा कि अब मैं अनंताचार्य के साथ में रहूँगा, जाके उनके बगीचे देखे, कुंड जो बनाया हुआ था वो देखा अपने आँखों से। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगा, अपने शिष्य का आलिंगन किया, आलिंगन करके खूब आशीर्वाद प्रदान किया और ऐसे प्रसन्न चित्त से वो दर्शन भी करने लगे बालाजी के। और वहाँ जाकर वो कहने लगे दर्शन के बाद, अब तिरुपति तिरुमला ये वैकुंठ से अभिन्न है, इसलिए वैकुंठ जगत को कभी भी दूषित या प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ एक दिन रहूँगा, फिर चले जाऊँगा और इस एक दिन में भी मैं उपवास करूँगा, क्योंकि उनको यहाँ पर रह के मलमूत्र त्यागना नहीं था, क्योंकि ये तो वैकुंठ है, मैं कैसे करूँगा। इसलिए उन्होंने खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। जब फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, एक दिन हो गया, मैंने दर्शन कर लिए वेंकटेश्वर भगवान के, तो फिर श्री शैलपूर्ण ने कहा कि देखो, ऐसा है कि ऐसे किसी शास्त्र में कहा है कि जब हम तिरुमला आते हैं तो 3 दिन रुकना चाहिए, तो 3 दिन रुक के जाना। तो अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाए तो रहे और 2 दिन, परंतु उपवास पूरा किया, निर्जल उपवास। और उस समय दिन में वेंकटेश्वर भगवान की सेवा करते, अनंताचार्य के साथ में रहते और फिर वो आए बालाजी भगवान के सामने अनुमति लेने के लिए कि मैं अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो भगवान वेंकटेश्वर भी रामानुजाचार्य के ऊपर बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने कहा कि हे रामानुज, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें दक्षिण भाग में श्रीरंगम में मेरे ही घर में निवास करने की व्यवस्था बना दी है, और साथ साथ मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ कि जिस व्यक्ति को तुम वैकुंठ भेजना चाहो, मैं उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाऊंगा। बात आई समझ में? भगवान ने क्या कहा रामानुजाचार्य से, जिस कोई व्यक्ति को भी तुम वैकुंठ में भिजवाना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, उस व्यक्ति को मैं वैकुंठ भेज दूंगा। तो ये होती है रामानुजाचार्य जैसे भक्तों की शक्ति। श्रील प्रभुपाद जी से भक्तों ने एक बार पूछा कि प्रभुपाद जी, अब ये वैकुंठ जाने की योग्यता तो हमारे लिए अप्राप्य लग रहा है, इतना सब करना, ये नियमों का पालन, इतनी शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, हमारे हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, इन सबको नष्ट करके शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करके फिर पहुंचना वहाँ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, तो क्या कोई छूट दी जा सकती है क्या? मतलब कितने प्रतिशत हमारी भक्ति होनी चाहिए शुद्ध? 100% तो बहुत मुश्किल है, तो क्या थोड़ा कम हो सकता है? आप कुछ कंसेशन दे देंगे, कुछ छूट दे देंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, चलो 90%। 90% प्रभुपाद जी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है 80%। प्रभुपाद जी ऐसे भी बहुत मुश्किल है, ठीक है 70%, इससे कम नहीं। फिर अपने चादर को ऐसे करके वो अपने कंधों पर डाल के वो चले गए। तो सारे भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी आपके धोती को पकड़ के हम रहेंगे, फिर आप जब जाएंगे तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे। शुद्ध भक्तों की कृपा से कुछ भी संभव होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, बहुत प्रसिद्ध टीकाकार हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर और अन्य ग्रंथों के ऊपर, वैष्णव ग्रंथों के ऊपर भी। तो उन्होंने बताया है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि जहां भगवान के भक्त कृपा देना चाहते हैं वहां अपने आप भगवान की कृपा चली जाती है। भक्त की कृपा निर्धारित करती है कि भगवान की कृपा कहाँ जाएगी। हाँ, भगवान भी स्वतंत्र हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ कृपा बरसा सकते हैं, परंतु भगवान इतने अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। और भक्त तो चाहते ही हैं कि सबका उद्धार हो, इसलिए जब मध्यम आदि अधिकारी भक्त भी इच्छा करते हैं कि किसी भक्त का उद्धार हो, वो भक्त बन जाए, तो भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, परंतु निश्चित ही आज नहीं तो कल भगवान ऐसे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वरदान भगवान ने दिया और फिर उनको अनुमति दे दी वापस लौटने के लिए श्रीरंगम। परंतु उसके बाद तुरंत वो नहीं लौटे, वो नीचे तिरुपति में आए और वहाँ पूरे एक साल रहे और श्री शैलपूर्ण से उन्होंने रामायण की कथा सुनी। रामायण के जो आंतरिक तात्पर्य हैं, गुह्य तात्पर्य हैं, उनको उन्होंने समझ लिया। 24 तरह से उन्होंने रामायण को समझ लिया श्री शैलपूर्ण से। और फिर एक साल की समाप्ति के बाद वहां से निकल पड़े और श्रीरंगम वापस चले गए। उधर रामानुजाचार्य के भाई जिनका नाम था गोविंद, वो भी आए थे तिरुमला में। वो बाद में भक्त बने थे, पहले गोविंद जो है वो शैव बन गए थे और बड़े मुश्किल से रामानुजाचार्य ने उनको भक्त बनवाया था, परंतु अपने आप नहीं, उन्होंने अपने मामा जो है श्री शैलपूर्ण जो भी एक सन्यासी थे उनसे निवेदन किया कि कृपया आप गोविंद के ऊपर ऐसी कृपा करें कि वो भक्त बन जाए। तो श्री शैलपूर्ण गए थे वहाँ श्री शैल में या कालहस्ती याद नहीं है अभी, तो वहाँ जाकर उन्होंने श्री गोविंद को भक्त बनाया था, वो वैष्णव बन गया और उनका शिष्य भी बन गया। तो अब गोविंद बहुत ही एक आज्ञाकारी और अच्छे शिष्य बने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण के। तो तिरुमला में ऐसे हुआ, जब रामानुजाचार्य वहाँ थे तो उन्होंने एक विचित्र बात देखी। उन्होंने देखा कि गोविंद हर रोज रात को अपने गुरु की शैया बनाता था, तैयार करता था, और जैसे ही वो तैयार करता था शैये को, खुद उस बिस्तर में दो चार क्षणों के लिए लेट जाता था, वहाँ लेटने के बाद फिर से उठता था। तो जब एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे रामानुज ने देखा तो सोचा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, किसी भी शिष्य को अपने गुरु के शैया में नहीं लेटना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, गुरु के वस्तुओं को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब रामानुजाचार्य के भाई थे, उन्होंने सोचा कि मैं सीधे जाके मैं नहीं बात करूँगा, तो उन्होंने जाके श्री शैलपूर्ण से कहा कि देखो गोविंद ऐसे कर रहा है। तो श्री शैलपूर्ण ने गोविंद को बुलाया, भाई मैंने सुना कि तुम ऐसे करते हो, जब मेरी शैया बनाते हो शैया में सो जाते हो, लेट जाते हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि गुरु की शैया में ऐसे सोना नहीं चाहिए। तो गोविंद ने कहा हाँ मुझे पता है गुरुदेव, इसका परिणाम क्या होगा वो भी मुझे पता है, परंतु मैं आपको असुविधा की परिस्थिति में नहीं देखना चाहता। मैं इसलिए लेट जाता हूँ दो चार क्षणों के लिए उस शैया के ऊपर कि मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कोई कांटा या कोई ऐसे चुभने वाली वस्तु को न हो, ताकि जब आप लेट जाएं तो आपको कोई असुविधा ना हो। बस ये देखने के लिए मैं परीक्षा करता हूँ शैया का। तो श्री शैलपूर्ण जो है वो बहुत प्रसन्न हुए इस भाव को देखकर, अपने शिष्य को उन्होंने आलिंगन कर लिया। रामानुजाचार्य ने भी बात को सुनी, वो भी बहुत प्रसन्न हो गए गुरु भक्ति देखकर गोविंद की। एक बार रामानुजाचार्य ने देखा कि गोविंद जो है वो एक सांप से कुछ कर रहा है, सांप का मुंह खोला हुआ है। गोविंद ने एक हाथ से उंगलियों से मुंह खोला हुआ था और दूसरे हाथ से उंगलियों से सांप के मुंह में कुछ उंगलियां डाल रहा था। तो रामानुजी कहे, ये क्या कर रहे हो? कहा, देखो इस सांप के मुंह के अंदर कुछ कांटा गया है, वो कांटा बहुत अंदर से चुभ रहा है उसको, तो मैं वो कांटे को निकाल रहा हूँ और इसके बाद जाके मैं वैसे भी स्नान करूँगा उस कुंड में, पुष्करणी में। तो रामानुजाचार्य ने भक्तों को पता चला कि गोविंद का हृदय कैसा है। सांप को भी कष्ट हो रहा था, सांप को भी देखना चाहते थे गोविंद, भले अपनी जान की खतरा हो, ये सांप डस भी ले नहीं भी ले पता नहीं, खतरा था। तो ऐसे भक्त हुआ करते हैं, हुआ करते थे और आज भी हैं कितने सारे भक्त ऐसे। तो जब रामानुजाचार्य वहां से निकलना चाहते थे तो गोविंद के साथ में जाना चाहते थे श्रीरंगम के लिए, तो अनंताचार्य स्वाभाविक रूप से बड़े दुखी हो गए अपने गुरु को जाते हुए देखकर। तो उन्होंने कहा कि आप यदि अब चले जाओगे तो आपके संग के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, यहाँ पर ये मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो आपका संग मैं कब प्राप्त करूंगा, इस स्थान में आप कब वापस लौट कर आओगे। तो भाव विभोर हो गए। तो फिर अनंताचार्य ने श्रील रामानुजाचार्य से पूछा कि मैं आपका एक विग्रह बनाना चाहता हूँ, आपकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि आपके सानिध्य में मैं हमेशा यहाँ रह सकूँ। आपसे विरह का अनुभव नहीं होगा क्योंकि आपका विग्रह यहाँ मेरे साथ में रहेगा। तो रामानुजाचार्य ने अनंताचार्य के भाव को समझ लिया और ना नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, चुप रहे, कुछ कहा नहीं। बाद में जब अनंताचार्य ने मूर्ति तैयार कर ली तो रामानुजाचार्य ने अपनी स्वीकृति इस तरह से व्यक्त कर ली कि जाके उन्होंने अपने ही विग्रह को आलिंगन कर लिया। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई विग्रह की। तो श्री रामानुजाचार्य से वो अभिन्न हो गए वो विग्रह। ये रामानुजाचार्य जैसे आचार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक दिव्य पार्षद हैं भगवान के, ऐसे श्री संप्रदाय में मान्यता है। और फिर ऐसे करने के बाद फिर वहाँ से वो निकल पड़े। और ये जो पहली रामानुजाचार्य की मूर्ति है और आज भी भगवान श्री बालाजी के बाएं तरफ मंदिर में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति दिखाई पड़ती है आज भी। उसके बाद फिर श्री रामानुजाचार्य वहाँ से निकल पड़े। एक बार हुआ ये, जब अनंताचार्य अपने बगीचे में सेवा कर रहे थे तो एक जहरीला कोबरा सांप वहाँ पर आया और अनंताचार्य को उसने डस दिया, और जैसे डस दिया तो वो गिर पड़े वहाँ पर, और जाके उन्होंने स्नान कर लिया तुरंत पुष्करणी में। जब उनके शिष्यों को पता चला कि ऐसे हुआ है तो वो सीधे उनके पास आए कि गुरुदेव आपको अभी तुरंत कोई औषधि लेनी चाहिए, नहीं तो ये जहर फैल जाएगा अंदर से। तो अनंत आचार्य ने मना कर दिया, नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं उनकी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैंने पुष्करणी में स्नान भी कर लिया, अब इसकी दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शिष्यगण सारे चिंतित हो गए कि अरे क्या किया जाए, तो किन से शिकायत की जाए। तो सीधे भगवान वेंकटेश्वर के पास गए, भगवान देखिए हमारे गुरुदेव हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, सांप ने डस लिया है उनको, अब उनके शरीर के भीतर वो विष है, जहर है, अब वो दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो कृपया आप कुछ बताइए। तो ऐसे सब हुआ करता था, ऐसे भक्त थे, इस योग्यता के भक्त थे। तो जब तुलसी माला लेकर आए अनंताचार्य, तो भगवान बालाजी ने कहा रुको भाई जाओ नहीं यहाँ से, ठहरो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। जब सांप ने डसा था उस समय अनंताचार्य तुलसी दल निकाल रहे थे, तोड़ रहे थे तुलसी माला बनाने के लिए भगवान के लिए। तो तुलसी माला तो बना ली, तुलसी माला बनाने के बाद भगवान को अर्पण करने के लिए आए, तब बालाजी भगवान ने रोका और कहा कि अरे देखो तुम्हारे शरीर में अब ये जहर है सांप का, इसको जल्दी से निकालो, कुछ दवाई ले लो, कुछ उपचार कर लो, नहीं तो क्या होगा, मैं तुम्हारे संग के बिना क्या करूँगा यहाँ पे। ऐसे वेंकटेश्वर भगवान अनंत आचार्य को बोल रहे थे। तो फिर अनंत आचार्य ने उत्तर दिया कि कोई समस्या नहीं है, सांप ने जब मुझे डस लिया तो मैंने तुरंत जाके पुष्करणी ने स्नान कर लिया, और वैसे भी आप किस तरह के कौन से जहर की बात आप कर रहे हैं, मैं मेरे अंदर भी एक बहुत भयानक कोबरा सांप है जिसके तरह तरह के जहर हैं, ये क्रोध काम लोभ इत्यादि सब भरे हुए, इतना विष मेरे शरीर में है, तो इसके लिए क्या उपाय है। अभी दूसरा जो जहर है वो तो मामूली जहर है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शरीर नष्ट होगा, परंतु ये जो भयानक सांप मेरे हृदय में बैठा हुआ है इसकी वजह से मेरे आत्मा का विनाश हो जाएगा, तो देखो कौन सा खतरनाक ज़्यादा जहर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अनंताचार्य ने कही, इसलिए कहा जाता है कि विष और विषय ये दो शब्द होते हैं, विष मतलब जहर, कभी कभी लोग जहर पान करते हैं और आत्महत्या कर देते हैं, और विषय ये क्या होता है, विषय अर्थात जो संसार के भोग के वस्तुएं होती हैं उनको विषय कहते हैं। तो आचार्यों ने ऐसे टीका की है कि विष से ज्यादा खतरनाक विषय होता है, क्योंकि विष का पान करने से ज्यादा एक शरीर का विनाश होता है, परंतु विषयों का भोग करते रहने से व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार भौतिक देह धारण करना पड़ता है, और हर बार जब वो भौतिक देह धारण करता है उसकी मृत्यु होती है। तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने से, विषय भोग करने से कितने शरीरों का विनाश होता है, अनगिनत शरीरों का, और ये विष जहर ग्रहण करने से एक शरीर का नाश होता है, इसलिए विष से ज्यादा खतरनाक है विषय। तो इसी बात को अपने तरह से अनंताचार्य यहां पर कह रहे थे। फिर वो कहने लगे यदि वो सांप इस सांप से ज्यादा शक्तिशाली रहा तो मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी आत्मा भौतिक सृष्टि और वैकुंठ जगत के बीच में जो विरजा नदी है उसमें स्नान करके फिर मेरी आत्मा आपके चरण कमलों में वैकुंठ में आएगी, आपके सानिध्य में मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, और यदि ये सांप अर्थात मेरा शरीर उस बाहर वाले कोबरा से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुआ तो मैं मरूंगा नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर यहाँ पे तिरुमला में जो भी वैकुंठ है मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, तो चाहे मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, आपकी सेवा ही तो करनी है ना मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अनंताचार्य ने कहा। अब भगवान बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर। और ये बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा को छोड़ते नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं, चुटकुले कहानियां भी सुना चुके हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। परंतु केवल इतना एक श्रीमद् भागवत का श्लोक बताएं जो शिव जी माता पार्वती से कहती हैं, कहते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शिवजी पार्वती देवी से कहती हैं कि देखो भगवान नारायण या कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं। नारायण परः सर्वे, ये सारे के सारे जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, किसी भी अवस्था में डरते नहीं हैं। स्वर्ग में, अपवर्ग में या नरक में, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, इन तीनों ही परिस्थितियों को एक समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो स्वर्ग में जाएं तो भगवान की सेवा करेंगे, पृथ्वी में रहें भगवान की सेवा करेंगे, मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ जगत में जाएंगे वहाँ सेवा करेंगे, नरक भी उनको यदि भेजा जाए, वैसे तो नहीं जाते परंतु तर्क के लिए भी यदि भक्तों को नरक में भेजा जाए तो वहाँ जाकर भी वो भगवान की सेवा ही करेंगे, हर अवस्था में वो भगवान की सेवा करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अनंताचार्य ने फिर इस तरह से भगवान अपने आराध्य देव को हरा दिया। कई बार ऐसे होता है, भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली या बुद्धिमान होते हैं, भगवान हार मान जाते हैं, और निश्चित ही भगवान कृपा करते हैं तो छोटा सा सांप क्या बिगाड़ सकता है किसी महान भक्त का। तो अनंताचार्य को कुछ हुआ नहीं। हम ये नहीं जानते कि क्या फिर आखिर उन्होंने जाके वो औषधि ली या नहीं ली, ये हमें नहीं पता। परंतु जो भी है, नहीं भी ली होगी तो भगवान ने उनकी रक्षा तो कर ही ली। तो अनंताचार्य ऐसे रहे, और थोड़े समय है फिर आगे, क्योंकि तो हमारे थोड़े भक्त कोई नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, तो एक और लीला सुनाते हैं। अनंताचार्य अपने बगीचे का देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करते थे, क्योंकि यही उनकी एकमात्र सेवा थी, फूल फल आदि उगाना, फूल माला आदि बनाना, भगवान के अर्पण करके सेवा करना। तो बड़े ध्यान से ही सब करते थे, हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे, बगीचे के हर कोने कोने को जानते थे, कौन सा पौधा कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किस फूल में क्या है गलती, सब कुछ जानते थे। एक बार हुआ ये कि वसंत ऋतु का समय था, और उधर भगवान वेंकटेश्वर लक्ष्मी देवी के साथ में कुछ वसंत ऋतु की लीला करना चाहते थे। वो तो बाहर में होता है ना, अंदर नहीं होता, और कोई बगीचे के रमणीय वातावरण में ऐसे लीला करना चाहते थे। तो रामानुज नंदवन जो बगीचे का नाम था अनंताचार्य ने रखा था, उससे और सुंदर स्थान कहाँ होगा। तो रात को भगवान और लक्ष्मी देवी वहाँ पर चले आए, पर वहाँ विहार हुआ, फूलों को तोड़े, पूरा बगीचा जो है तहस नहस हो गया, कहीं फूल कहीं फल निकाले खा लिए, आधे रख लिए, फूलों को भी निकाला, तुलसी भी उठा के, सब पौधे इधर उधर हो गए। और जब सुबह को अनंताचार्य आए तो देखा, अरे ये क्या हो गया, तहस नहस सारे बगीचे में हो गया। तो जो रखवाली करने के लिए भक्त था उसको पूछा, भाई क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो देख रहा था, ये रखवाली कर रहा था। तो लगातार ऐसे कई रातों तक चलता रहा, और अनंताचार्य को पता नहीं चला कि ऐसे क्या हो रहा है और कौन कर रहा है ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं रखवाली करूंगा आज रात को। तो खुद बैठे रहे हाथ में लाठी लेकर, अब देखते हैं कौन आता है यहाँ पर, कौन मेरे बगीचे को नष्ट करता है इस तरह से, बिना पूछे भगवान की सेवा के लिए जो फूल आदि है उनको तोड़ कर ले जाता है, कौन है वो व्यक्ति। तो रात को बैठे रहे और फिर रात को उन्होंने देखा कि एक दंपति आ रहे हैं वहाँ पर। ऐसे लग रहा था कि मानो कोई राजकुमार और राजकुमारी हो साथ में। बहुत ही दिखने में सुंदर थे दोनों, और दोनों के वस्त्र और अलंकार भी इतने आकर्षित थे कि वो देखते रह गए। अब अनंताचार्य के देखते देखते ये सामने आए और वो सब फूलों को तोड़ने लगे, कोई एक दूसरे को सजाने लगे, फिर कोई फलों को तोड़ दिया खाने लगे। तो दूर से अनंताचार्य देख रहे थे, ए कौन हो तुम? तो पत्थर था पड़ा वहाँ, पत्थर फेंका उनकी ओर रोकने के लिए कि कौन हो तुम? तो दोनों भाग गए। अब इनका पीछा कर गए अनंताचार्य, दोनों को पकड़ लिया उन्होंने। फिर पकड़ के उनको कहा कि अब मैं आप दोनों को इस पेड़ से बांधूंगा, फिर दंड दूंगा, फिर देखूंगा ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी हरकत। तो दोनों को बांधने की तैयारी में थे कि वो जो राजकुमार थे वो अपने आप को छुड़वा कर जो भाग के निकल पड़े, लेकिन उसकी पत्नी वहीं पे वहीं रह गई। तो पत्नी अकेली रह गई तो अनंताचार्य ने कहा, कौन हो तुम और ये सब, ये ना कौन है तुम्हारे पति, ये सब क्या कर रहे हो? तो वो घबरा गई लड़की, कहने गई, नहीं 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 देखो मैं निष्पाप हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मुझे डांटना नहीं, देखो मैं आपकी पुत्री हूँ, पुत्री के समान हूँ, तो मुझे आप पुत्री समझ के मुझसे व्यवहार करो। हाँ ठीक है पुत्री हो ये ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो कहा, पति आप तो जानते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि हम दोनों यहाँ के पालक हैं, मेरे पति राजा हैं और मैं रानी हूँ, और मेरे पति जो है रात को दिन में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, रमण करते हैं, विलास करते हैं सब जगह, जो मन में चाहे वो करते हैं, तो इसलिए बगीचे में जिए जो है उनकी गलती मेरी नहीं है, इसलिए मुझे दंड मत देना। तो फिर अनंताचार्य ने कहा, फिर भी ठीक है मुझे उनको पकड़ना तो होगा, तो ठीक है यहाँ एक चंपक वृक्ष है, इस वृक्ष से मैं तुम्हें बांध लेता हूँ, अब तुम्हें छुड़वाने के लिए पति तो आएंगे ही, तब मैं उसको पकड़ूंगा। तो ऐसे बांध दिया। तो जब बांध दिया ऐसे, तो वहाँ भगवान वेंकटेश्वर के गर्भगृह में उनके राज सिंहासन पर पुजारी लोग जब आए तो उन्होंने देखा कि अरे लक्ष्मी जी कहाँ है, लक्ष्मी जी का चिन्ह नहीं है वहाँ। भगवान वेंकटेश्वर तो जल्दी जाके पहुँच गए ना सिंहासन पर, वो तो पहुँच गए, लक्ष्मी देवी रह गई पीछे, ये कहाँ है, कहाँ चली गई? तो फिर खबर पहुंची कि यहाँ कोई राजकुमारी है। तो पुजारी लोगों का मन में संशय है, ये क्या गड़बड़ है, क्या है ये मामला? तो वो चले आए सीधे। तो अनंताचार्य ने बताया कि ऐसे ऐसे है, देखो ये इन्होंने ऐसे किया। तब फिर सारे पुजारी लोग समझ गए कि अब क्या करना चाहिए, कि ये तो साक्षात वो ले आए उनको पास में, और पता चला कि तो साक्षात लक्ष्मी है। तो अनंताचार्य को बड़ा पछताव हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, दोबारा गलती कर दी, पहली बार तो ऐसी गलती की थी जब भगवान स्वयं सेवा करने के लिए आए थे, और इस बार ये गलती हो गई। तो लक्ष्मी देवी के सामने पूरा दंडवत प्रणाम किया, और क्या मेरे लिए अब प्रायश्चित होगा इस बड़े अपराध के लिए, कुछ बताइए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि आपको मुझे आपकी पुत्री मानना चाहिए, कि मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप मानोगे? हाँ हाँ अवश्य मानूंगा। तो कल आप मुझे ले जाना पालकी में, मेरे घर में, वहाँ सिंहासन पर, जैसे पिता बेटी को ले जाता है अपने बेटी के पति के घर में। तो फिर वो तैयार हुए, तो फिर बाद में पालकी में बिठाकर बड़े धूमधाम से उस राजकुमारी को ले गए, और जैसे ही सिंहासन के सामने आए तो वो अंदर चली गई और अदृश्य हो गई, और फिर वो फिर से विराजमान हो गई भगवान वेंकटेश्वर के वक्षस्थल पे। इस तरह से अनंताचार्य जो हैं वो भगवान के ससुर बन गए। देखिए कभी कभी भगवान के भक्त उनके माता बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी बहन बनते हैं, कभी उनके मित्र बनते हैं, और कभी कभी ससुर भी बनते हैं। तो अनंताचार्य भगवान के ससुर बन गए, और आज भी जब ऐसे विवाह के कोई उत्सव होते हैं तो उसमें अनंताचार्य भी का स्थान भी अवश्य रहता है, क्योंकि वो ससुर हैं, तो ससुर का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो अनंताचार्य को हर ऐसे उत्सव में भी याद किया जाता है। तो खैर यहाँ अभी हम कथा को विराम देंगे, क्योंकि अब एक छोटा सा नाटक होगा हमारे सामने। इन कथाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान उनके भक्तों के बीच में कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके लिए। श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय, श्री अनंताचार्य की जय, श्री नवनरसिंह भगवान की जय, श्री अहो विलक्षित की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।